તારીખ 7/12/1993 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકના 7મા અધિકાર ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 74.
મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક 7મા અધિકાર કેવળ નિશ્ચયાવલંબી જૈના ભાષી મિથ્યા દ્રષ્ટિઓ કા નિરૂપણ હૈ. શાસ્ત્ર પઢ કર કે નિશ્ચય કા સ્વરૂપ જિસકો ભાવ ભાષિત નહીં હોતા હૈ ઓર જો કલ્પના કર લેતે હૈ એસે જીવો કો નિશ્ચયાભાસ હોતા હૈ. ઉસકા સિદ્ધાંત ભી વિપરીત હૈ, ઉસકા જ્ઞાન ભી વિપરીત હૈ, ઉસકી આચરણ પ્રવૃત્તિ ભી વિપરીત હોતી હૈ. યહાં ઇનકે મુખ સે કિતને પ્રશ્ન ઉઠાએ હૈ કે જો શાસ્ત્ર મેં આતા હૈ એસી બાત વો આગે કરતા હૈ ઓર ઉસકા સમાધાન ફિર દેતે હૈ. वह कहता है कि मोह के उदय से रागादिक होते हैं. ज्ञानी को भी चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं. पूर्व काल में भरत आदि ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कषाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं. भरत चक्रवर्ती थे तो उनको 6 खंड का राज जीतने का कषाय हुआ कि नहीं हुआ, और गृहस्थी में पंचेंद्रिय भोग के विषय के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं, और वो प्रसिद्ध रूप ज्ञानी थे उसमें तो कोई दो मत नहीं हो सकता है. तो फिर हमको भी राग होता है, इनको भी होता है और हमको भी होता है. अगर इनको दोष नहीं तो हमको भी नहीं होना चाहिए. कानून तो सबों के लिए एक होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता तो पक्षपात हो जाएगा कि इनका राग है वो दोष नहीं और हमारा राग दोष. ये बात तो न्याय संपन्न नहीं रहती है, ऐसी बात चलेगी. उत्तर कि ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं यह सत्य है. हम ये नहीं कहते हैं कि उनको राग हुआ ही नहीं था. चारित्र मोह के परिणाम रूप उनको राग हुआ था, चारित्र मोह का उदय था. दर्शन मोह का उदय ज्ञानी को नहीं होता, तो वो बात उतनी सत्य है. परंतु बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते. बुद्धि मैंने यहाँ अभिप्राय लेना है. ज्ञानी को रागादि करने का अभिप्राय कभी नहीं होता. राग करने लायक है, राग कर्तव्य है. एक कण भी राग का करने लायक है ऐसा अभिप्राय ज्ञानी को कभी नहीं होता है. इसलिए राग करने की बुद्धि नहीं होती. बुद्धि पूर्वक माने क्या? राग करने की बुद्धि नहीं है उसको. उसका वर्णन तो अविशेष आगे करेंगे, वो बात भी तुमको बताएंगे खोल करके कि ज्ञानी का भीतर का स्वरूप कैसा है. जो समय सारा दिन में आए हैं अपन चलता है विषय 3 दिन, और थोड़ा खुलासा और करते हैं. तथा जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है उसके नाश का उपाय भी नहीं है. उसको रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवित होता. क्या राग से श्रद्धान का अनुसंधान लगाया पंडित जी ने कि जिसको रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है. विषाद मैंने खेद दुख, मुझे राग होता है, ये मुझे दुख का कारण है, मेरे आत्मा को नुकसान का कारण है, मेरी शक्ति को आवरण लाने वाला पदार्थ है, भाव है, ये मुझे नहीं होना चाहिए। ऐसा जिसको खेद नहीं होता तो उसका नाश का उपाय क्यों करेगा? उसको तो अनुमोदन हो गया, गुप्त अनुमोदन। जिसने जिसको अपने राग का खेद नहीं है उसको अपने राग का अनुमोदन वर्तता ही है, भले उसको पता नहीं है कि अनुमोदन मैं करता हूं कि नहीं करता हूं, लेकिन है ही उसको। इसलिए वो राग का नाश करने का उपाय नहीं करेगा। जिसको राग बुरा लगा ही नहीं उसको, और लगा नहीं है, उसका श्रद्धान भी ऐसा नहीं है, लगता नहीं है, तो श्रद्धान भी उसको ऐसा नहीं है। देखिए किस भूमिका में राग की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए यथार्थतया, तो उसका श्रद्धान का नाप आ जाता है। जैसे ज्ञान दशा में रागादिक होते हैं लेकिन उनका निषेध आए बिना नहीं रहता। गणधर भगवान को भी तीर्थंकर देव के प्रति राग आता है लेकिन उसका निषेध उनको आए बिना नहीं रहता। उनको बार अंग की रचना का विकल्प रूप राग आता है लेकिन उसका निषेध आया बिना नहीं रहता। ऐसे चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति क्या? जिसको ज्ञानी होना है ऐसा ज्ञानी के पूर्व भूमिका में भी ये बात चालू हो जाती है मुमुक्षु को। जब यथार्थता आती है परिणमन में, तब परिणमन में यथार्थता आने से इसका एक लक्षण वो है कि अपने दूषित भाव का उसको निषेध आए बिना रहेगा नहीं, दोष का निषेध आएगा। और दोष का निषेध कब आएगा? कि जब दोष का समझ ज्ञान होगा तब दोष दिखेगा, तब जब दिखेगा ही नहीं तो निषेध आएगा कहां से? तो यहां से उनकी यथार्थता चालू होती है और वो आगे बढ़ता है तो ज्ञान दशा में तो उसका निषेध आए बिना रहे नहीं। तो उसका प्रतिपक्ष लिया है पंडित जी ने कि जिसको नहीं आता है उसकी क्या परिस्थिति समझना, तो बाना पकड़ता है कि भरत चक्रवर्ती को भी राग आता था इसलिए मुझे उसको जो आपको कोई तकलीफ नहीं तो मुझे भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसको राग आता था उतना ही उसका परिणमन नहीं था, उसको राग आता था और राग का निषेध भी उसी वक्त आता था। तुझे राग आता है और तुझे राग का निषेध नहीं आता है, तू तो बाना पकड़ता है कि उनको आता है तो मुझे आता है, वो तो आता है तो आता है, उसमें क्या है, तो भूमिका में उस भूमिका में आता है, उसमें कभी बांधा लेना चाहिए नहीं, तो फर्क है। आता है उसमें फर्क है। उसको निषेध सहित आता है, तुझे अनुमोदन सहित आता है, इसलिए तेरी श्रद्धा विपरीत है, ऐसी बात है। उसको रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवित होता, यानी राग तो होता है लेकिन राग का राग भी इसको है और ज्ञानी को राग का राग नहीं है, वो बड़ा अंतर है। और ऐसा श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये बात स्पष्ट हुई कि जिसको रागादिक करने लायक है, बुरे नहीं है, उसका निषेध नहीं आता है, वो तो नियम से ही मिथ्या दृष्टि है, उसके लिए कोई परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। वो तो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? तो हो ही नहीं सकता, यानी सम्यक दृष्टि को राग का निषेध आए बिना रहता नहीं। तो सम्यक दृष्टि को अकेला राग आता है, ये जो तेरा अवलोकन है वो गलत है। तू भीतर की अवस्था को नहीं जानता कि उसको राग आता है, साथ साथ राग का निषेध भी उसको आता है।
निषेध की तो प्रवृत्ति होगी,
हाँ, पर परिणति कोई भाव है कि नहीं है? परिणति क्या, उसका मतलब कि उसको विकल्प करना नहीं पड़ता है। लेकिन निषेध है, जो परिणति वाला निषेध है वो थोड़ा निषेध है, और विकल्प करे तो ज्यादा निषेध है, ऐसी भी बात नहीं है। परिणति तो तब होती है कि बहुत निषेध हो, तब निषेध की परिणति होती है। बहुत राग हो तो राग की परिणति होती है, और बहुत निषेध हो तो निषेध की परिणति होती है। तो परिणति हो गई, इसका मतलब क्या कि बहुत निषेध आया था तब परिणति हुई है, इसका मतलब वो होता है। और जीव जी आदि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। जीव जीव में नव तत्वों का जो श्रद्धान है, उसमें जो पुण्य पाप आश्रव बंध है, इसका श्रद्धान कैसे करना कि वो हे है, ऐसा श्रद्धान करने का है। तो तूने नव तत्व का श्रद्धान में ऐसा बात तो तेरी है नहीं। तथा भरतादिक सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसे होती है, वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। उनकी भीतर की दशा कैसी अलौकिक होती है वो भी तुझे आगे बताएंगे। तुझे उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रय बंद होगा। मैंने भरत आदि चक्रवर्ती की बात जो कथानुयोग में आती है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि होने पर भी उनको 96,000 रानियां थी और 6 खंड का वैभव था, ये कोई मिथ्या दृष्टि को आलम्बन लेने के लिए की बात नहीं है। वो कृपालु देव ने लिखा है कि चक्रवर्ती आदि का आलम्बन मैं नहीं लेता, ऐसा आलम्बन मुझे कभी नहीं हो, ऐसा लिया है। तो जिसको विषय कषाय की भावना है, जिसकी विषय वासना तीव्र है, वो आलम्बन ले लेगा, ऐसी बात सुन करके आलम्बन ले लेगा कि देखो भरत चक्रवर्ती को इतना विषय कषाय था, हमको तो इससे अल्प है, वो हमारे से ज्यादा दोषी था, हमारा दोष कम है, ऐसी बात है नहीं। बाह्य वैभव से दोष निर्दोषता का नाप किया जाता नहीं है, ऐसी बात है। पकड़ में फर्क है। गुरुदेव दृष्टांत देते थे, बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है मुंह से, क्योंकि उनको तो पकड़ने का एक ही साधन है, और अपने बच्चे को भी पकड़ती है मुंह से। दोनों पकड़ में फर्क है। चूहे से चूहों को इतना पकड़ेगी कि उसका लोह निकल जाए तो भी छोड़ेगी नहीं, और बच्चे को ऐसे पकड़ेगी कि उसको थोड़ा भी लग नहीं जाए, दुख नहीं हुए, ऐसे पकड़ेगी। दोनों बात एक सी दिखती है, लेकिन एक सी है
नहीं,
फर्क है। ज्ञानी राग को पकड़ता है, नहीं पकड़ता है, वो छोड़ता है, और अज्ञानी तो राग को पकड़ता है। इसलिए ज्ञानी राग को पकड़ता है, करता है, ऐसा नहीं गिनते, छोड़ते हैं, नाता रहते हैं, ऐसा गिनते हैं, और वो सही है। वही कहा है, वही 111 नंबर का कलश में कहा है कि मग्ना ज्ञान नयेषिणोपि यद यद अति स्वच्छंद मंदोद्यमाः। उसका अर्थ है कि ज्ञान नय का अवलोकन करने वाला या अवलंबन लेने वाला, ज्ञान का जानकारी करने वाला या झूठे ज्ञान नहीं का अवलंबन करने वाला भी जो स्वच्छंद मनोद्यमी होते हैं, वे संसार में डूबते हैं। ये भी समयसार का कलश है कि जो ज्ञान का बहाना पकड़ते हैं कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हो गया, अभी मुझे कोई राग का अपराध मुझे लागू पड़ता नहीं है, ऐसा होकर के जो स्वच्छंदी होता है, राग में मग्न होता है, मग्ना लिया है, वो स्वच्छंदी संसार में डूबेगा, वो स्वच्छंदी संसार में डूबेगा। उस सूत्र का विपरीत सूत्रार्थ करता है क्या, वो सूत्र को विपरीत करना, इससे बड़ा दोष कोई नहीं होता, चाहे उसका उपदेश दें या चाहे ऐसा उपदेश ग्रहण करें, दोनों एक ही बात है। ग्रहण करने वाला पहले ग्रहण करता है, फिर ऐसा उपदेश देने लगता है। पहले तो ग्रहण हो जाता है उसको विपरीत, शास्त्र का विपरीत अर्थ उसको बैठता है कि देखो यहाँ ज्ञान ज्ञान होता है तो फिर वो राग का कोई अपराध नहीं ऐसा लिखा है, राग तो पर है, ऐसा करके ले जाएगा। तो कहते हैं कि उसका जो विपरीत अर्थ करने वाला है या विपरीत ग्रहण करने वाला है या विपरीत प्रतिपादन करने वाला है, वो संसार में अवश्य अवश्य डूबता है। और भी वहां ज्ञानिन कर्मन जातु कर्तुम उचितम, वो 151 कलश में लिया है, क्योंकि 150 में वो बात लिया है जरा जोर से, तो 151 में उसका स्पष्टीकरण दिया है। इत्यादि कलश में तथा न तथा तथापि न निर्गलम चरितुम इष्यते ज्ञानिनः, ये भी बात लिया है उन्होंने, इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। जहाँ निश्चय नहीं का निरूपण चला है, जो जो परमागमों में, उसी परमागमों में निश्चयाभास का निषेध अवश्य अवश्य किया ही है। क्यों, आचार्य महाराज नहीं जानते थे क्या कि ऐसा कहने से किसी को स्वच्छंद भी हो सकता है, तो ऐसा स्वच्छंद का निषेध भी उन्होंने वहां ही किया है। ऐसा नहीं किया है कि अधूरी बात छोड़ दी है करके, ऐसा बात नहीं है। इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंध का कारण नहीं है। अभिप्राय से कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे, यह तो बनता नहीं। इच्छा, मैंने अभिप्राय से जो कार्य करे, जो कार्य हो वह कर्मबंध का, अभिप्राय बिना का, बिना इच्छा के मैंने बिना अभिप्राय का जो कार्य होता है उसका कर्मबंध नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी का अभिप्राय नहीं होता राग करने का। लेकिन अभिप्राय से कर्ता होकर के करे, पर कर्ता हो और ज्ञाता भी रहे, ऐसा तो कभी नहीं बनता। इत्यादि निरूपण वहां किया है कि जो करता है वो ज्ञाता नहीं, करे कर्म सोई करतारा, जो सा जाने सो जाननहारा, करने वाला ज्ञाता नहीं, ज्ञाता है वो करने वाला करता नहीं है। इसलिए रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ का उद्यम रखना चाहिए। रागादि का नाश करने का उद्यम सभी साधकों को होता ही है, नहीं होवे ऐसा कभी बनता नहीं है, होता ही है, नियम से होता है। मुमुक्षु को भी होता है और ज्ञानी को भी होता है। अगर रागादि का नाश करने का उद्यम नहीं तो रागादि तो और बढ़ जाएंगे, उसको बढ़ाने तो सहज तेरे को तो हो जाएगा। नीचे के परिणाम लाने के लिए तो आदत बन गई है अनादि से। वहां अनुक्रम से पहले तीव्र राग आदि छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, वहां राग आदि छोड़ना है उसको, अशुभ तो पहले छोड़ना, अशुभ भले रह जाए शुभ को छोड़ना, ऐसा उपदेश कहीं भी दिया नहीं है,
कहीं भी नहीं।
पहले अशुभ छोड़ना, मोक्षों को भी अशुभ घटता है और शुभ बढ़ता है, साधक को भी अशुभ घट जाता है और शुभ बढ़ता है। शुद्धि होती है उसको भी अशुभ घट जाता है और शुद्ध के शुभ बढ़ जाता है, जब तो देवलोक में जाते हैं इसके फल में, और आगे जर के जाकर के अशुभ को भी तोड़ करके शुद्ध अवस्था प्राप्त करते हैं, वैसी बात है। इसलिए वहां अनुक्रम से पहले तीव्र राग आदि मैंने पाप छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, और पश्चात मंद राग आदि भी छोड़ने के अर्थ शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना, शुभ को भी छोड़ करके शुद्धोपयोग रूप होना, उसको भी छोड़ना होगा। सहारो लेनो लेवो पड़े तो छोड़े कभी, छोड़ना और सहारा लेना दो बात विरुद्ध है, तो समझ में क्यों नहीं आती? सहारा लेना और छोड़ना दो बात कैसे बनेगा? बीच में आता है, जैसे हम अनाज बोते हैं तो हमारे खेत में घास फूस भी हो जाते हैं, वो बारिश होती है ना तो घास फूस भी हो जाते हैं, तो घास का निंदामण करके उसको निकाल देते हैं और अनाज के जो पौधे हैं उसको रहने देते हैं, ऐसी बातें। तो ये पुण्य तो घास फूस है, घास फूस तो तिरंज खाते हैं, मनुष्य नहीं खाते है? वो था कि नहीं था वो अलग बात है, वो एक कुदरती व्यवस्था है, लेकिन नहीं था तो इसलिए पकड़ो उसको, उसका सहारा ले लो, उसका आलम्बन ले लो, उसका अच्छा रखो, उसका उपभोग करो, ये बात है
नहीं?
बंद नहीं है क्या? बंद है तो बंद कहते हैं या बंद नहीं है और बंद कहते हैं? बंद नहीं है, मोक्ष है क्या? बंद नहीं है तो मोक्ष होगा, या तो मुक्त परिणाम हो या तो बंद परिणाम हो, तीसरी जाति तो है ही नहीं।
बाबा जी बाबा रानी आपकी जी सुनाम चार तो मुझे चार तो फिर हमने भी
हैं
बात छोड़ा है, बाबा रानी सुनाम चार नंबर चार तो फिर हमने
हम बराबर है, लेकिन वो कहाँ तक बाबा गाड़ी लेना है? अभी 72 साल तो हो गया, अभी उसका 72 साल हो गया और भी बाबा गाड़ी लेना है? कहाँ तक बाबा गाड़ी लेना है? 72 साल तक तो नहीं छोड़ा, और वही अभी इसका और उसका आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसका पक्ष करते हैं, अभी भी उसका पक्ष करते हैं, तो अब कहाँ तक बाबा गाड़ी में? 72 साल का बाबा है आप? बाबा तो 5 साल का होता है, 72 साल का बाबा नहीं होता है। तुम तो जैन कुल में जन्मे, 5-7 साल में तो ये बाबा गाड़ी छोड़ करके फिर सही रास्ते पे आना चाहिए, अभी तो 72 साल में उसका पक्ष करते हैं, कहाँ तक वो छोड़ेंगे? फिर कब छोड़ेंगे? कि छोड़ने का अभिप्राय दिखता नहीं है, उसको छोड़ने वाला छूटने वाला नहीं है।
नहीं,
अब कहाँ तक बच्चे हैं? अपन कहाँ तक बच्चे हैं? अपनी बात करो ने, दूसरे की क्यों करते हो? हाँ, उसको रहने देंगे तो अनाज कमजोर हो जाएगा या पकेगा नहीं, उसको निकालना ही पड़ेगा, शुरू से ही वो बात अभिप्राय में होना चाहिए। अभिप्राय विरुद्ध हो जाए दूसरी बात है, अभिप्राय पूर्वक हो जाए दूसरी बात है। ये अभिप्राय का प्रकरण नहीं जानते लोग, इसलिए तो अभिप्राय पर इतने लंबी चौड़ी बात किया। अभिप्राय का प्रकरण लोग नहीं जानते, क्या होता है ना क्या नहीं होता है उतना ही जानते, लेकिन इसके पीछे अभिप्राय क्या है वो तो देखो। राग तो ज्ञानी को भी होता है, अज्ञानी को भी होता है, दोनों के अभिप्राय में पूर्व पश्चिम का अंतर है। अज्ञानी मानता है कि वो सहारा लेने लायक है, और ज्ञानी मानता है कि वो निषेध करने लायक है, उतना तो अंतर है, बड़ा अंतर है उसमें। और कमजोर हो जाएगा। अगर कोई बाबा गाड़ी लेके चलता है लड़का और उसको छोड़ता नहीं है, तो वो कभी छोड़ करके चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा सहारा है, ये तो मेरा सहारा है, तुझे तो छूटने वाला नहीं है। मिथ्या तो पहला गुण स्थान है, इसलिए कहा हाँ गुण स्थान है। वो 14 गुण स्थान में पहला गुण स्थान मिथ्यात्व नाम का है, अनादि से है, वो नया नहीं है। वो आप लोग जैन हुए 14 गुण स्थान का पूरा पता नहीं है कि 14 गुण स्थान का स्वरूप कैसा है, है? नाम जैन है लेकिन 14 गुण स्थान का स्वरूप क्या है उसका पूरा पता नहीं है किसी को, ऐसी बात है। इच्छा या अभिप्राय लेना है, अभिप्राय विरुद्ध जो पाप होता है उसका उसका रस नहीं पड़ता, क्योंकि निषेध चलता है तो रस कैसे आएगा, तो जिसका रस नहीं उसका अनुभाग स्थिति कैसे बंधेगा, ऐसी बात है। बंध तो अनुभाग स्थिति को कहते हैं, प्रकृति प्रदेश की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बंध के चार पहलू हैं, प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग। उसमें अनुभाग ही बंध है, खास करके स्थिति की भी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति प्रदेश की भी चिंता करने की जरूरत, अनुभाग की चिंता करने की है। अनुभाग रस से होता है, अनुभाग मैंने फलदान शक्ति, वो कहां से आती है, जितना रस उतना तीव्र बंध, जितना मंद रस उतना अल्प बंध, उतनी बात है। जैसे एक छोटी वो होती है ना, क्या बोलते हैं आप, फुल्ली कुंसी होती है कि नहीं
जी।
और बहुत पीड़ा देती है
जी।
और इतना बड़ा फोड़ा होता है पीड़ा नहीं देता है
जी।
तो पीड़ा दे इसकी चिंता है या पीड़ा बड़ी छोटी है इसकी चिंता है, पीड़ा देने का दुख होगा, बड़ा छोटा का दुख नहीं रहता है, तो इतना बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है हमको, लेकिन ये तो इतनी सी है बहुत पीड़ादायक होती है। इसका कारण क्या है कि वहां से रस तीव्र दिया है, तो उसका प्रदेश ज्यादा नहीं है, क्षेत्र ज्यादा नहीं है, लेकिन पीड़ादायक बहुत है
जी।
तो चारों पहलुओं में जो अनुभाग है वो बंद है। रागोद्गार महारस है ना, बंधोधिकार में पहला कलश को आएगा, महारस है राग का जो है वही बंध का कारण है, चिका चिकना ही है राग की हुई बंध का कारण है, और कुछ बंध का कारण नहीं है। आश्रव बंध तो अरियंत को होता है एक समय का, योगाश्रव मन वचन काया है, कोई चिंता करने की जरूरत
नहीं है,
नहीं है, क्योंकि वहां अनुभाग नहीं है, रागी नहीं है, राग रस तो कहां से होगा। हाँ लेकिन इच्छा या अभिप्राय विरुद्ध होता है तो प्रमाद का दोष होता है, लेकिन उसमें अनुभाग पड़ता नहीं है, चिंता तो अनुभाग के करने की है, तो उसमें प्रमाद का तो दोष है ना, उसको आगे क्यों करना उसमें वो गौण हो जाएगा, एक को मुख्य करने में दूसरा गौण हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो जानने का विषय है, गौण कर उस जान करके गौण करना है। सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को
नहीं होता,
नहीं तो मिथ्या दृष्टि को तो पुण्य भी पुण्य अनुबंधी नहीं होता है, पाप के तो क्या करे, उसका तो पुण्य भी पाप समेत है, पाप सहित तो उसका पुण्य होता है उनका तो। इसलिए रागादि को बुरे यानी अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना, यही उपदेश है, यही सिद्धांत है। वहां अनुक्रम से पहले तीव्र रागादि छोड़ने के अर्थ शुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, और पश्चात मंद रागादि को भी छोड़ करके शुभ को भी छोड़ करके शुद्धोपयोग रूप होना। तथा कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य व स्त्री सेवन आदि कार्यों को भी घटाता है। अभी तो ये प्रकरण चलता है निश्चयाभास का, व्यवहाराभास का आएगा उसमें शुभ का निषेध करेंगे अच्छी तरह ये तो अभी प्रकरण चालू होगा व्यवहारावास का, कि जो पुण्य कर्म के पक्षपाती हैं वो कभी धर्म को नहीं साधते हैं, इसका कारण कार्य बहुत चर्चा करेंगे इसके, लेकिन वो बात बाद में चालू होगी, अभी तो प्रकरण दूसरा है इसलिए वो बात नहीं लेते, जोर से नहीं लेते हैं यहाँ पर। हम क्या कहते हैं कि कितने लोग अशुभ को क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य घटा देते हैं और गृहस्थी भी छोड़ देते हैं, तथा शुभ को हेय जानकर शास्त्राभ्यास आदि कार्य में भी नहीं प्रवर्तते हैं। क्या कि शुभ तो है ही है, छोड़ने लायक है, पाप भी छोड़ो और पुण्य कार्य भी छोड़ दो, शास्त्र भी स्वाध्याय करने से पुण्य होगा। विद्राग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त हुए नहीं है। अभी क्या शर्त है कि शुभ को छोड़ करके शुद्धता का पुरुषार्थ में शुभ छूटे तो यथार्थ है। शुद्धता के पुरुषार्थ कर करके तो अशुभ में चला जाएगा, और अशुभ में चला जाएगा इस डर से मैं शुभ को पकड़ूं और शुद्धता का पुरुषार्थ नहीं करूं तो भी तू फंस जाएगा शुभ में। तो ये बात ऐसी है कि उपदेश वितराग देव का ऐसा है असी धारा समान,
असी धारा
कि उसको शुद्धता में ले जाए और ले जाए, अशुभ को भी छुड़ाएगा और शुभ को ग्रहण करने शुद्ध को ग्रहण करने के अर्थ और शुभ शुभ को भी छुड़ा देंगे, ऐसी बात है। क्या कहा कि शुभ हे जानकर शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तते हैं, यानी कोई भी शुभ प्रवृत्ति नहीं करते हैं, तो उनकी में अयथार्थता क्या रही कि वितराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं करता है, वो पुरुषार्थ नहीं करता है, इसलिए वे जीव अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी निरुद्यमी होते हैं। क्या कहते हैं, अर्थ मैंने पहले व्यापार आदि, काम मैंने गृहस्थी स्त्री से बना दी, और धर्म मैंने पुण्य, और मोक्ष मैंने मुक्ति के पुरुषार्थ, तो सबको उसको छोड़ गया, चारों प्रकार का पुरुषार्थ नहीं रहा, तो अधिक निरुद्यमी हो करके स्वच्छंदी हो करके तीव्र मिथ्यात को ग्रहण करके वो डूबेगा, उसका तो कोई तिरने का अपेक्षा कोई अवसर नहीं आएगा। उनकी निंदा, मैंने ऐसे जीवों की निंदा, पंचास्ती का जो कुंदकुंदाचार्य की रचना है की व्याख्या में की है, वो पंचास्ती का है, कुंदकुंदाचार्य के चारों शास्त्रों में ये बहुत प्रतिपादन में प्राथमिक जीवों को भी समझ में आ जाए ऐसा ग्रंथ है। इसके पर गुरुदेव के प्रवचन हुए थे और वो प्रवचन सदगुरु प्रवचन प्रसाद में जो प्रसिद्ध हुए थे उनका भी ग्रंथ में प्रकाशन होने का अपन लोगों ने चालू किया है, वो वितराग ट्रस्ट में वो प्रवचन का भी प्रकाशन अच्छा प्रेस में दिया है, वो अमृतलाल भाई ने जिसने वो प्रवचन लिखे थे वो ही प्रवचन। पंचास्तिकाय के प्रवचन गुरुदेव को पुस्तकाकार में प्रसिद्ध अब तक नहीं हुए हैं, वो प्रसिद्ध पहले पहले हो जाएंगे ऐसे, उसमें पीरियोडिकल में हुआ था जो डेली निकलता था सदगुरु प्रवचन प्रसाद, उसमें निकला था, तो उसकी मुमुक्षु ने फाइल बना रखी थी, तो कलकत्ता में मोहनलाल जी पाटनी है ना, उसके पास दो फाइलें थी पूरी, उन्होंने पढ़ी, अच्छा लगा कि प्राथमिक जीवों के लिए गुरुदेव के ये प्रवचन बहुत अच्छे हैं, क्यों कि दिगंबर समाज में भी कई लोगों की ऐसी भ्रांति है कि कांजी स्वामी तो सब बहुत ऊंची ऊंची बात करते थे लेकिन हम तो कोई समझते नहीं है, तो दिगंबर समाज या नए कोई मुमुक्षु भी समझ सके ये प्राथमिक बातें सब, इसके लिए पंचास्तिकाय के जो प्रवचन है उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने स्वाध्याय किया, उनको अच्छा लगा और उन्होंने प्रकाशित करने का अनुरोध किया और उसमें अपना योगदान भी दिया, अच्छी रकम भी उसने दिया है, तो ये भी प्रेस में दे दिया है वो काम चालू करने को। तो शू कि आख्यो ग्रंथ है एक थी छेली गाथा सुधी ने आने व्यवस्थित कर दोनों फाइल दे दिया आपने को। अच्छा वो दो फाइल उन्होंने दे दिया। उनको बहुत दिन से वो विचार था, वो तो इधर आने वाले थे, इसमें हमारा वहाँ जाना हुआ तो बोले कि हमको ये करना है, पैसा भी खर्च करेंगे, हमको ये प्रकाशित करना है और कई लोगों को हम भेंट देना है कि वो पढ़े। नहीं वो तो गुजराती में, हिंदी करे तो और दो साल निकल जाए, इसका हिंदी कराएंगे, आगे जा करके हिंदी कराएंगे। एक विद्वान तो हिंदी वाला मिला है, एक और भी मिल जाएगा और एक भी मिल जाएगा, दो तीन मिल जाएगा तो फिर हिंदी का काम तो बहुत हो जाएगा, आगे जा करके हिंदी का काम ज्यादा होगा। अभी अपने पास एक ही विद्वान है तो ये प्रवचन नवमी पहला भाग है उसका हिंदी करीब करीब हो गया है, उसकी जांच चलती है फिर वो प्रेस में जाएगा। प्रवचन नवमी पहले वो होगा, सबसे पहले हिंदी। क्या कहते हैं, उनकी निंदा मैंने ऐसे स्वच्छंदी जीवों की निंदा जो शुभ अशुभ दोनों छोड़ कर जो स्वच्छंद में गुजरते हैं, ऐसे जीवों की निंदा पंचास्तिकाय ग्रंथ में कुंदकुंदाचार्य ने इसकी व्याख्या की है। 172 गाथा की टीका में वो बात चली है। उनके लिए दृष्टांत दिया है कि जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होते हैं और जैसे वृक्ष निरुद्यमी है वैसे वे जीव आलसी और निरुद्यमी हुए हैं। जैसे बहुत मिठाई खाते हैं, शक्कर मैंने उसका आथा आता है ना, फिर घेन चढ़ता है, बहुत खाया है अभी सो जाएंगे हम, क्योंकि बहुत खाया है अभी नींद आती है। पहले खाने का तीव्र भाव आता है फिर नींद लेने का आता है, तो वो तो कोई उद्यम करता नहीं है, तो उनके लिए तो कोई तिरने का अवसर होता ही नहीं।
साधन शुद्धि माने तब पीरो
है,
साधन शुद्धि माने तब पीरो ये प्रमाण जाता है।
हाँ ठीक ठीक है, ऐसा कोई उद्यम करने के लिए करता है तो ठीक बात है, पुरुषार्थ करने के लिए कर नहीं खाता है या कम खाता है तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अभिप्राय क्या है कि आत्म कल्याण करने का है तो जो कुछ करता है वो सही है। इसका जब अभिप्राय ठीक है तो उसकी प्रवृत्ति ठीक है, जिसका अभिप्राय विपरीत है उसकी प्रवृत्ति ठीक लगे तो भी ठीक नहीं है, ऐसी बात है। सब नाप अभिप्राय से करना चाहिए, प्रवृत्ति से करना नहीं चाहिए, ऐसी बात है। अब इनसे पूछते हैं कि तुमने बाह्य तो शुभ शुभ कार्यों को घटाया, अब इनसे पूछते हैं कि तुमने बाह्य तो शुभ शुभ कार्यों को घटाया, तू व्यापार भी नहीं करता है और शास्त्र भी नहीं पढ़ता है, तो हम तेरे को अब पूछते हैं, सुन हमारे प्रश्न, हमारा प्रश्न सुन अब। परंतु उपयोग तो बिना आलम्बन रहता नहीं, तेरा उपयोग को कहा तो आत्मा का आलम्बन होना चाहिए या तो बाहर विषय कषाय का, तीसरी तो कोई बात उपयोग को होती नहीं है, निरालंब उपयोग तो किसी का होता नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है बता तो सही। तू कहता है कि मुझे अशुभ तो करना नहीं है लेकिन शुभ भी नहीं करना है, और शुद्धोपयोग का मेरा कोई उद्यम नहीं है, अब तेरा उपयोग कहाँ रहता है बता तो, कि नियम से तेरा उपयोग अशुभ में जाएगा। जब शुद्धि का तेरा पुरुषार्थ नहीं है तो नियम से तेरा उपयोग अशुभ में गए बिना रहेगा नहीं, पाप प्रवृत्ति हो जाएगी उपयोग की। यदि वह कहे कि आत्मा का चिंतन करता हूं, शास्त्र नहीं पढ़ता हूं और व्यापार भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं तो आत्मा का चिंतन में रहता हूं, तो शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहराया और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है, बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस्थ का उपयोग लगता नहीं है। अरे गंधर आदि का भी उपयोग इस प्रकार से नहीं रह सकता, इसलिए वे भी शास्त्राधिकारियों में प्रवृत्ते हैं। क्या कहता है, तू छद्मस्थ है, पहली तो तेरी अवस्था क्या है वो देख ले। तो शास्त्र का पढ़ना विकल्प है और आत्मा का चिंतन करना वो विकल्प नहीं है, कहाँ की बात लाया। तो तुझे वो भी पता नहीं है कि शुद्ध उपयोग किसके कहते हैं और शुभ उपयोग किसको कहते हैं, इसको तुझे तो उसका अंतर क्या है, तफावत क्या है, उसको तेरी समझ नहीं है। और कोई भी गणधर भगवान छठे गुण स्थान, सातवें से सब निर्विकल्प दशा होती है, छठे गुण स्थान तक सब विकल्प दशा होती है। तो गणधर देव भी शुद्धोपयोग में से बाहर आते हैं, मैंने सप्तम छोड़ता है तो छठा आता है। मुनि दशा में शुद्धोपयोग है वो सप्तम सप्तम गुण स्थान है और शुभोपयोग है वो छठा गुण स्थान है। छठा गुण स्थान में निर्विकल्पता नहीं और सातवें गुण स्थान में सब विकल्पता नहीं होती। तो छठे सातवें में तो ज्यादा रह नहीं सकते, अगर ज्यादा अंतर्मूर्त रहे, ज्यादा क्या अंतर्मूर्त भी रहे तो मुनि को केवल ज्ञान हो जाता है, तो नियम से छठे में विकल्प में आ जाते हैं। तो विकल्प में वो क्या करते हैं, क्या वो विषय कषाय का सेवन करते हैं कि नहीं, वो भी शास्त्रादिक की प्रवृत्ति गणधर है तो भी वो शास्त्र की प्रवृत्ति करते हैं, उपदेश देने की प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए वे भी शास्त्रादिक कार्यों में प्रवृत्त हैं। तेरा उपयोग गणधर आदि से भी कैसे शुद्ध हुआ माने, हम कहां से मानेंगे कि तो गणधर से भी आगे है, क्योंकि मुनि तो हुआ नहीं, कहाँ रहता है तू बता कि तू तेरा उपयोग कहाँ रहता है, इसका भान तुझे नहीं है, ऐसी बात है। और तू स्वच्छंद में मिथ्यात को और अज्ञान को पुष्ट करता है। दूसरा अशुभ तो ठीक है, लेकिन मिथ्यात अज्ञान का अशुभ तो बहुत बड़ा है, अनंत संसार में रुलाने वाला, ये तेरा चलता है, इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है, इसलिए तेरी बात ठीक नहीं है। शुभ शुभ को छोड़ने की तेरी बात तो ठीक नहीं है। जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गवाता है, निठल्ला मैंने नवरा होकर के व्यर्थ, जैसे कोई व्यापार आदि छोड़ दे और रखड़ता फिरता है, क्या व्यर्थ काल गंवाता है, उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गंवाता है, बप्पम में रह गया तो तेरा तो अज्ञान और मिथ्या तो तीव्र हो ही जाएगा। कभी कुछ चिंतन सा करता है, कभी तू आत्मा का विकल्प करता होगा, कभी बातें बनाता है, कभी उसकी चर्चा भी करता होगा, कभी भोजन आदि भी तू करता है, भूखा तो रहता नहीं है, भोजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास तपस्रण भक्ति आदि कर्मों में प्रवृत्ता नहीं है। जो तुझे प्रवर्तना चाहिए, यथाशक्ति शास्त्राभ्यास भी करना चाहिए, यथाशक्ति प्रमाद कम होने की प्रवृत्ति तप में तप की भी करनी चाहिए, और यथाशक्ति भक्ति आदि जिनेन्द्र भक्ति आदि करनी, गुरु भक्ति शास्त्र भक्ति देव गुरु शास्त्र की भक्ति करनी चाहिए। कोई ऐसे होते हैं कि हम तो अध्यात्म की बात करते हैं, हमको तो भक्ति करनी नहीं है, ऐसे शुष्क अध्यात्म भी हो जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। ये तो जिन मार्ग है, कहीं भी दोष पनपे, दोष का कोई तीव्रता हो जाए, दोष एक भी बढ़े, ये इस मार्ग में ये बात है नहीं। ये तो शुरू से पूर्ण निर्दोषता का मार्ग है। क्या जिसका प्रारंभ ही पूर्ण निर्दोषता के लक्ष्य से होता है, शुरुआत ही पूर्णता से होती है, इसके पहले शुरुआत होती नहीं, ऐसा मार्ग है ये। इसलिए कहीं भी कोई भी गलती से दोष बढ़ जाए, ये बात इस मार्ग में सम्मत करने में नहीं आई। उसका निषेध आएगा।
पंचम काल में आपको पड़े,
पंचम काल हो या चतुर्थ काल हो, काम तो एक ही तरह से होगा। एक हो तीन काल में परमार्थ का पंथ। ये किस काल में लिखा, चतुर्थ काल में लिखा कि पंचम काल में लिखा?
पंचम काल में लिखा,
ये पंचम काल में लिखा है। एक हो तीन काल में परमार्थ का पंथ, चतुर्थ काल में कोई दूसरे ढंग से हुए, इधर कोई दूसरी पद्धति से पंचम काल में हुए, ऐसा कभी बनता नहीं।
पंचम काल में श्रेणी मारा जाता है, प्रसाद करी हमें मनुष्य जीवन में कहीं करता हूँ। हाँ, कहीं ना पंचम काल कुंद आचार्य ने साथ लिखे, कौन से काल में लिखे?
ये तो गुरुदेव तो बार बार कहते थे कि पंचम काल के मुनि लिखते हैं। गुरुदेव जी परमागमों का प्रवचन करते थे, देखो ये पंचम काल के मुनि लिखने वाले हैं, चतुर्थ काल के मुनि का लिखा हुआ नहीं है। ये 2000 साल पहले लिखे कुंदकुंदाचार्य ने, और अमृतचंद्राचार्य ने 1900 साल पहले लिखा है।
आगे के लिए लिखे जाते हैं, कोई बुक्स लिखी जाती है आगे के लिए भी लिखी जाती है।
हाँ, भावी पीढ़ी के लिए तो लिखा, किसके लिए लिखा? अगर उसी वक्त वो उपदेश देते थे, लेकिन लिखा क्यों? लिखा इसलिए कि इसकी परंपरा भविष्य में भी चालू रह जाए, इसलिए शास्त्र लिखे उन्होंने। वो तो मुनि थे, जंगल में रहते थे, फिर भी उतना परिश्रम किया है। जंगल में रहते थे फिर भी शास्त्र की प्रवृत्ति किया है, देखो। तो फिर मुमुक्षु हुए और ज्ञानी हुए, वो तो करे ही करे। अब परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए, शास्त्राभ्यास से उपयोग निर्मल होता है। देखो क्या मिलिया, दर्शन मोहम्मद होता है ना, तपश्चरण यथार्थता से करे तो देह की क्रिया में अपनत्व रखने का वहां अभ्यास नहीं होवे, या देह में अपनत्व छोड़ने के लिए करे। और भक्ति आदि भी स्वभाव के हेतु से नहीं, लेकिन भगवान के स्वरूप का लक्ष्य से करें, अपने स्वरूप का लक्ष्य से करें, तो उसमें उपयोग निर्मल होता है। उसका ज्ञान में दर्शन मोह की मंदता घटने से निर्मलता होती है। सुनाशा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है, पर वो तो प्रमादी हो जाता है, हमको कोई विकल्प ज्यादा नहीं आता है, तो हम निर्विकल्प हो गए, ऐसा ठहराता है। वहां क्लेश थोड़ा है होने से, जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसे आनंद मानता है। वो क्या करता है कि उसको तीव्र कषाय की प्रवृत्ति नहीं है, वो सुबह व्यापार आदि भी छोड़ दिया, निवृत्ति ले लिया, और आलसी बनकर पड़े रहे हैं, हमको कोई ज्यादा विकल्प नहीं आते हैं, तो हम तो ऐसे बैठे रहते हैं या सोते रहते हैं, क्योंकि ज्यादा विकल्प नहीं आता है और प्रवृत्ति हमको सुहाती नहीं है। और मान लेता है कि हमको आनंद है, शांति है, आनंद है, तो ये भ्रम में पड़ा है, ऐसी बात है। देखो शास्त्र कैसे कैसे रह गए हैं, किसी को कहीं भी ब्रह्म में ये नहीं हो जाए और दोष नहीं बढ़ जाए, तो उसको निकाल दिया है। अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, स्वप्न का राजा, क्या
स्वप्न में राजा बन गया,
उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। मैं तो सिद्ध समान मेरा आत्मा है, उसको ज्ञान में आता नहीं है, एक विकल्प करता है और मानता है मैं तो सिद्ध समान मानता हूं। वो सपनों का राजा है, क्या है वो? क्योंकि उसको कल्पना हुई, जैसे स्वप्न में कल्पना होती थी उसमें जागृत, उसको जागृत अवस्था में कल्पना हुई, क्या अंतर? कि कुछ अंतर नहीं है,
आनंदित होता है। आनंदित होता है,
आनंदित होता है, इसका मतलब क्या? कि वो खुश होता है, आनंदित में वो आत्मा का आनंद नहीं, खुश होता है। मैं तो अपने को सिद्ध समान मानता हूं, मैं तो अपने को सिद्ध समान
मानता हूं,
फिर मैं सिद्ध समान हूं तो मैं अरविंद को वंदन क्यों करूं? ऐसा हो जाएगा फिर। अथवा जैसे कहीं रति मानकर खुशी सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर खुशी सुखी होता है, विकल्प करके सुखी होता है, भले ही वो आत्मा का विकल्प करता हो, उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। क्या उसको कैसा आनंद कहता है? अनुभव जनित आनंद कहता है नहीं,
है नहीं।
लेकिन कसाई थोड़ा मंद रहता है तो उनके अपने को तो बहुत शांति है, कोई अपने को तो व्यापार तो छोड़ दिया और शास्त्र भी ज्यादा पढ़ते नहीं, आत्मा का चिंतन विचार करते हैं और बहुत आनंद आता है, हमको तो बहुत आनंद आता है। क्या बताता है? हमको तो बहुत आनंद आता है। तो उसको आत्मा का अनुभव जनित आनंद कहता है। विचार ने अनुभव ने आत्मा ने आनंद माने मन के साई ने शांति ने मन ने शांति ने। तथा जैसे कहीं और अति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापारादिक और पुत्रादिक को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है। क्या जैसे द्वेष से कोई उदासीनता आती है कि घर में कोई मृत्यु हो जाए तो खान पीन में रस नहीं आवे तो उसको उदासीनता माने, ऐसे व्यापार के प्रति उसको द्वेष आता है, पुत्रादि कुटुंब परिवार प्रति उसको द्वेष आता है और उसको खेद का कारण जानकर उदास रहता है। और खेद को वैराग्य मानता है, वैराग्य अलग चीज है, खेद अलग चीज है, द्वेष है वो वैराग्य नहीं, वैराग्य है वो द्वेष नहीं। शास्त्र में तो बहुत बात आती है कि कुटुंब परिवार है वो धूतारा की टोली है, तुझे अच्छे अच्छे शब्द पिताजी पिताजी करके मामणा शब्द गुरुदेव गुजराती में कहते, मामणा शब्द कहते, मीठा लगे ऐसे शब्द, अरे भाई साहब करे तो बहुत अच्छा है, अरे तू लूटता है तो तू लुटाता है इसलिए उसको लुटारा बताया, वास्तव में द्वेष करने के लिए कुटुंब प्रति द्वेष करने के लिए वो बात कही नहीं है, ऐसी बात है। तो उसको वैराग्य खेद को वैराग्य मानता है या द्वेष को वैराग्य मानता है। शोध ऐसा तेरा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है, जैसे कषाय गर्भित कोई दीक्षा लेता है, मान गर्भित कोई दीक्षा लेता है, लोभ गर्भित दीक्षा लेता है, वो कषाय गर्भित है, वो ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है। ये सब पोल खोल दिए टोडरमल जी ने, जो भी धर्म के अंचले के नीचे गड़बड़ करता है उसका सब पर्दाफाश कर दिया है। वितराग रूप उदासीन दशा में तो जो निराकुलता होती है वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मुह की हीनता होने पर प्रकट होता है। निर्विकल्प दशा का जो ज्ञानानंद है और वैराग्य वितरागता है वो तो उसको चारित्र मोह भी उस वक्त मंद हो जाता है जब निर्विकल्प दशा होती है। चारित्र मोह बढ़ता है तो शुभाशुभ होता है ज्ञानी को, लेकिन उसकी मंदता में उतना उसका पुरुषार्थ बढ़ता है कि वो निर्विकल्प आनंद दशा में आ जाते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं, स्वसंवेदन को ज्ञान कहते हैं, निर्विकल्प आनंद को आनंद कहते हैं, और कहीं विषय कषाय में रस नहीं आता है उसको वैराग्य कहने में आता है। तो गुरुदेव कहते थे, दृष्टांत ऐसे देते थे कि जैसे कोई अच्छी मिठाई खाए, अच्छी खीर खाए, उसको ज्वार का सड़ी हुई ज्वार का रोटी है, सड़ गई हो ऐसी ज्वार की, वो लाल ज्वार आती है ना हल्की, अच्छी वाली नहीं, उसकी रोटी उसको कैसे सुहाएगी कि उसमें उसको रस आएगा क्या?
नहीं आएगा।
ऐसे जिसको आत्मा के आनंद का रस आता है उसको सुबह शुभ परिणाम के तीव्र मंद कषाय में कहीं रस आता नहीं है, उसी को वैराग्य कहते हैं, इसका नाम वैराग्य है, द्वेष का नाम वैराग्य
नहीं है,
ऐसी बात है।
ये
अब वो तो उल्टा तो बहुत किया है, उल्टा तो जीव ने
बहुत किया है,
वो कोई सीखना पड़ता नहीं है, वो लड़का लड़के 10 साल का होता है ना तो बाल ठीक करने लगता है कि नहीं लगता है अपने आप? हाँ, सिखाना पड़ता है कैसा करना लगता है? उसके लिए कोई ट्यूशन रखते हैं? स्कूल की पढ़ाई के लिए मास्टर रखना पड़ता है मास्टर को, लेकिन कपड़ा पहनने के लिए, बाल ठीक रखने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छी शोभा करने के लिए, अलंकार पहनने के लिए कोई उसको सिखाना पड़ता है? वो अनादि से 4 संज्ञा पड़ी है जीव को, वो कोई सिखाना पड़ता नहीं है, ऐसी बात है। इसलिए आत्मा का पुरुषार्थ करने का तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। नीचे गिरने के लिए तो सहज ही अपने वजन से ही नीचे जाता है पत्थर, चढ़ाने के लिए मजदूर चाहिए, पाड़ने के लिए तो थोड़ा सा धक्का दे दो, 7 मंजिले से भी नीचे गिर जाएगा। तथा वह व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्ता है। व्यापार को तो छोड़ता है, क्या छोड़ता है? व्यापार को छोड़ता है, गृहस्थी को छोड़ता है, ब्रह्मचारी हो जाता है, लेकिन खाने पीने में मस्त हो जाता है उसका। देखो क्या कहाँ पकड़ा है, देखो तो अच्छा भोजन मिलता है तो तुझे रस आता है। हाँ, और वहां अपने को कषाय रहित मानता है। कैसे कषाय रहित? भाई तो तीव्र पाप के परिणाम है। भोजन खाते वक्त अच्छे भोजन में रस आना, ये तो तेरा तीव्र कषाय पाप के परिणाम है। गृहस्थी छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, क्या हुआ, ये क्या करता है तो? परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। देखो आर्त ध्यान नहीं लिया, रौद्र ध्यान लिया, पाप के परिणाम में आनंद सुख सुख मानना, ये रौद्र ध्यान का प्रकार है। हिंसा नंदी, चोरिया नंदी, ऐसे जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश न हो, क्या प्रतिकूलता आने से भी दुख न हो। वैराग्य में तो ऐसा होता है, अनुकूलता छूट जाए, प्रतिकूलताएं आ जाए तो उसको दुख होता नहीं है। प्रतिकूलता आने से आत्मार्थी तो तिरने का मौका समझता है, यही मेरा पुरुषार्थ करने का प्रसंग आया, मेरे को कोई भय होने का कारण होना चाहिए नहीं। जैसा होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा मतलब क्या, मैं पुरुषार्थ करूंगा इस वक्त मेरा परिणाम बिगड़ेगा नहीं, ऐसा शुरू से उनको पावर रहता है, अभिप्राय है ना। जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश न हो, राग द्वेष उत्पन्न न हो, तब निष्कषाय भाव कहने में आता है। अनुकूलता हट जाए, प्रतिकूलता आ जाए, परिणाम बिगड़ने लगे तो निष्कषाय हुआ नहीं है। कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, मुमुक्षु अवस्था में ऐसा अभिप्राय बांधते हैं मुमुक्षु, प्रतिकूलता क्या, मेरा मृत्यु का समय भी आ जाए, नाड़ भी टूटने लगे और पता चल जाए कि अभी आयुष पूरा होने की तैयारी है, तो पुरुषार्थ में लग जाता है क्या, एकदम सावधान हो जाता है पुरुषार्थ में। ऐसा तो मुमुक्षु अवस्था में तैयारी होती है, ज्ञानी की तो बात ही दूसरी होती है, उसको निष्कषाय कहते हैं। जिसके परिणाम प्रतिकूलता में बिगड़े वो तो निष्कषाय हुआ नहीं है, उसका तो सकषाय परिणाम बहुत तीव्र हो गया, तो उसमें तो अधोगति के सिवा दूसरा फल आता नहीं है। तो ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसा निश्चयाभासी की जो प्रवृत्ति है वो तो भ्रम में पड़ा है, मानता है शुभ शुभ मैंने छोड़ा और वो मैं धर्म करता हूँ, वो भ्रम में पड़ा है। तो भ्रम का, भ्रम को निकालने के लिए शास्त्र है क्या,
भ्रम को निकाल देने के लिए,
अशुभ छोड़कर शुभ में लगाने का भी नहीं, भ्रम तोड़ने के लिए ये शास्त्र है कि कहीं भी मिथ्या भ्रांति निश्चयाभास से भी नहीं हो, पुष्ट नहीं हो, और व्यवहाराभास से भी पुष्ट नहीं हो, और प्रमाणाभास से भी पुष्ट नहीं हो, तीनों को निकालने के लिए ये प्रकरण लिखा है, ऐसे बात है।
भगवान।